नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सरकार ने कहा है कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल शेष है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वह ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों और अमरीकी सैन्य क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। वहीं इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान की राजधानी और अन्य शहरों में भारी हमले हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक परिणाम कोविड महामारी की तरह विनाशकारी हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से भड़के संघर्ष ने कई उद्योगों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र संघर्ष मौजूदा स्थिति को तेजी से प्रभावित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रसद, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन के वितरण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 37 लाख लीटर केरोसिन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव तैयारियों के दौरान 400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5,100 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड और 5,200 से अधिक स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को 5,000 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता विकास परियोजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी परियास्वामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने आज इसकी घोषणा की। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री कुमारन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज ओलावृष्टि के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।